का जो उद्देश्य है बोलने वाले का, कोई भी ठीक नहीं, दोनों ठीक नहीं है, किंतु कुशल से हैं। हाँ कुशल से हैं। एक स्त्री का पति उसको छोड़ दिया है और वो बिलबिला रही है, कोई सहेली आई, कैसी है, ठीक है, भीतर में आग जल रही, पति के हृदय में भी आग जल रही होगी, कैसे हैं, बहुत ठीक है। अच्छा तुम्हारी घर वाली कैसी, क्या कहें, उसी के लिए बड़ा दुखी है। थोड़ा सा पूरे देने पर मालूम होता है जी, कोई सुखी जगत में नहीं है, सुखी वही है जो भगवान का अच्छी तरह से भजन करता है, वो हमारे जैसे लोग नहीं, हम लोग भी दुखी हैं। अभी हमको एक रोग हो गया है, उनको कुछ रोग हो गया है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई लाफड़ा हो गया, लाफड़ा जानता है तुम, ये सब देसी भाषाएं हैं। ये ऊन लगा रहता है, कोई बड़ी सुंदरी लड़की थी, बड़ी सुंदरी थी, जब 15 वर्ष की हुई तो यहां पर एक सफेद दाग निकला, कहां सब, एक लड़का भी ऐसा था, और सब ठीक है, धन संपत्ति सब कुछ है, हो गया। ऐसे संसार में सभी लोग दुखी हैं, तो वो पूछे जिसे तुम सुखी है, तो वो राजा जरा सरल था और सब ठीक है, प्रभु एक बात कहूँ, हमें बच्चा ही कोई नहीं होता, बच्चा आप कृपा करके बतलाइए हमको, कब बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। उन्होंने देखा और बस इसको ललाट को देखने से बतला दिया, तुमको एक जन्म में नहीं 10 जन्म में भी तुमको पुत्र नहीं होगा। सच्ची बात ये है, हम झूठ फूट नहीं करते, क्यों, तुमसे हमको कोई कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सच्ची बात है जो तुम्हारा ऐसा ही कर्म है जो 7 जन्मों तक या इतने समय तक तुमको कोई पुत्र यही जन्म नहीं होगा। अब बड़े दुखी उनके चरण पकड़ लिए, बोले आप शक्तिमान हैं, समर्थवान हैं, आप हमको इच्छा करने से ही पुत्र हो जाएगा, आप हमको पुत्र दीजिए, तू उससे सुखी नहीं रहेगा, कभी नहीं। गुरु कहता है कि देखो तू भगवान का भजन करो और कोई काम न मत कर, और शिष्य कहता है गुरु जी ये बस यही हमारा एक करवा दीजिए और बाकी हम पीछे कर लें, पूछते ही गुरु की बात नहीं, वो अपनी जीत पर अड़ा रहेगा, वो जानते हैं कि इससे सुखी नहीं होगा। उसी प्रकार से इंदिरा जी ने बहुत समझाया, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, तुम भी नहीं होगा, तू भगवान का भजन कर, तू माना प्रभु हमको दे दीजिए, बस हमारी इच्छा है बस ये पूर्ण हो जाए। जिसका पुत्र नहीं है वो घर सब वीरान है, हमारे के बाद में राज्य कौन देखेगा, और हमको मरने के बाद में कौन तर्पण करेगा, उसके जितने पूर्वज हैं प्यास के मारे मरेंगे और तरह तरह से गाली देंगे, ये महापापी हमारे कुल में हुआ, इसको पुत्र पैदा नहीं होगा। बहुत दुखी रोने लग गया दुनिया ने, कहा आप जरूर हमको पुत्र दिए, तो तू सुखी नहीं रहेगा ये समझो, कोई बात नहीं, जब तुमको एक पुत्र होगा हर्ष सुखप्रद बने गया, हर्षप्रद आनंद देगा और फिर दुखप्रद हो जाएगा। उन्होंने समझा नहीं ये क्या हर्ष, बस जाओ तुमको धन हो जाएगा, किंतु इस धन से दुख होगा, कैसा दुख होगा ये पीछे मालूम होगा, ये नहीं समझते हैं। संसार के किसी भी चीज से कोई सुखी नहीं रह सकता, अंत में उनके कहने से पुत्र हुआ मैंने क्या, वो तो समर्थ थे ऋषि, उन्होंने कहा ये ले जाओ अपनी स्त्री को जो जिसको सबसे बड़ी प्यारी है उसको, यही पर गड़बड़ हो गया। उनकी प्यारी कौन है, 1 करोड़ भर जाए थी ना, तो सभी तो उनकी प्यारी होनी चाहिए, वो फल दिया मैंने क्या उसी को देना जो सबसे बड़ी प्यारी है, तो वहीं पर भेद सृष्टि हुई कि नहीं, जहां उसको फल दिया उसी समय में सब स्त्रियों को उसके प्रति ईर्ष्या और राजा के प्रति भी ईर्ष्या की बीज बो गई। आ रहा है समझ में? उसी दिन जिस दिन
बीज दिए फल दे दिया
ऋषि, ऋषि जानते थे इस विषय को। हम अभी हमको कोई चीज खूब से सुंदर मिले और हमने किसी एक आदमी को दे दिया, क्या होगा? कहिए ये भी बड़े ऐसे हैं, शिष्य तो किया किंतु इसी को दिया और हम लोगों को किसी को नहीं दिया। बस उसी दिन से लग जाएगा झगड़ा विवाद। गुरु जी भी बड़े सावधान होते हैं, साधारण नहीं होते। वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि सभी समझे जी हम ही को प्यार करते हैं, कोई भी निराश होकर के जाए नहीं, ऐसा उत्तर की सोचते हैं। तो भी कभी वो हो जाता है कुछ दुर्भाग्य किसी शिष्य का होता है तो वो समझता है कि हमारे प्रति ये उनके प्रति पक्षपात कर रहे हैं, किंतु यथार्थ में वो सबको भगवत प्रेम देना चाहते हैं यदि शुद्ध गुरु। तो वो ऐसे ही पहले दिन वो जब फल दिया उसी समय में बीज बो गया द्वेष का और वो बढ़ता गया। जिस समय गर्भ हुआ ना तो वो द्वेष भी सबके गर्भों में जन्म गया। 1 करोड़ भार्याओं के अंदर में किसके प्रति? उस स्त्री के प्रति और राजा के प्रति ये भेदभाव करता है, ये हमारा शत्रु हुआ। पुत्र पैदा हुआ और उनका द्वेष भी खुल्लम खुल्लम अब आया। ओ राजा तब हमको देखता नहीं, तेल और साबुन के लिए पैसे नहीं देता, उनके पास में सब समय बैठा रहता है। बस और ईर्ष्या बढ़ी, लड़का बढ़ता गया, चांद की तरफ में रोज बढ़ता जाता, बड़ा सुंदर सलोनी। और इधर ईर्ष्या भी बड़ी सुंदर सलोनी बढ़ती गई। जब 5 वर्ष का हुआ तो ईर्ष्या भी 5 वर्ष की हुई और तब तक ये बड़ा, जैसे लड़का बड़ा हुआ ना ऐसे ईर्ष्या भी बड़ी हुई। और बड़ी होकर के क्या की?
लड़का तो एक है,
बस 1 करोड़ हृदय में ईर्ष्या मिल करके एक जगह हुई और उधर में एक लड़का उसके गर्भ में वो हुआ 5 वर्ष। इतनी जोर की ये हुई, बस इसने उसको दबा दिया था। उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके उसको विष दे दिया और लड़का ये हुआ। जब लड़का हुआ तो खूब आनंद और जब मरा तो कितना शोक। शोक हुआ मोह के कारण, मोह नहीं रहने से शोक नहीं होता, इसलिए किसी भी चीज में मोह मत रखो, शोक नहीं होगा। और यदि मोह रहेगा शोक, मोह की शोक कहते ये मेरा है, ये करताल मेरा है, किसी ने ले लिया तो शोक ऐसे भाग तुम्हारा था चुपचाप। तो शोक मोह से शोक होता है, अंत में वो मर गया। ये मरा जो कौन? अरे वो ऋषि जो थे ना अंगिरा, जब कह करके चले गए जो तुमको हर्षा प्रद लड़का होगा, तो वही एक शरीर में प्रवेश करके उसके पेट में चले गए और अपना वहां से कहीं पर तपस्या कर रहे हैं। 5 वर्ष के लिए वही देखा जो पुत्र तो है नहीं, तो भी आ गए, आ करके रहे 5 वर्ष के बाद में जब विष दे दिया तो अपने शरीर में लौट गए। या उन समझो इसको इस रूप में जो उन्होंने इस चीज को अनुभव कराने के लिए अपनी शक्ति के द्वारा एक आत्मा उस शरीर में ला, और इसके बाद में वो चला गया। अब ये सब लोग रोने लगे। जब रोने लगे तो नारद के साथ में अंगिरा आए, अरे भाई किस लिए रो रहा है, भेष बदल करके आए, समझ नहीं सके। सब लोग रो रहे हैं और जिन स्त्री ने विष दिया वो और अधिक जोर से रोने लगे। ये को समझे नहीं, काम किया उन्होंने, उन्होंने विष दिया और वही रो रही है। को रानी कम रो रही है और ये अधिक रो रही है। रानी तो मूर्छित हो गई, वो तो बोल नहीं सकी और ये हो हल्ला से आकाश पताल सब एक घर दिया। ये कपट का है ना, जो कपटी भक्त होते हैं उनकी भक्ति खूब दिखती है ना? और जो असल भक्त है उनकी भक्ति छिपी रहती है, उनकी कार्य करी होती है। कपट भक्तों का ऐसा भी होता है, अंत में आकर के बहुत समझाया, समझाने के बाद में उनको तत्व ज्ञान हुआ। इसमें यह सब वर्णन किया गया है, उसको प्रसंग को छोड़ दिया, अब अपने प्रसंग पर आ रहे हैं धीरे धीरे। जब उनको होश हुआ, उनको ज्ञान हुआ, तब देखा जी ये हमारा पुत्र नहीं, पुत्र को जीवित कर दिया। पुत्र से पूछा जे तुम कहाँ गया, उसने कहा जे मैं अपने कर्म के फल में वहां चला गया था, मैं यहां नहीं रहूंगा। ये कौन जन्म के हमारे माता पिता हैं, कभी इनका बाप में माँ मैं भी हुआ होगा। इस अर्थ पाने से राजा ने कहा जे हमारा लड़का मिल गया, हमको बोध हो गया, कोई किसी का नहीं है, पति पुत्र भाई बंधु कोई किसी का नहीं। इस प्रकार से बोध होने के बाद में फिर उन्होंने कहा जैसे अब हमको आप कुछ मंत्र दीजिए। तब उनको कहा जैसे शंकरसन जी की आराधना करो। शंकरसन जी की उन्होंने आराधना की, वो स्त्रियों को भी अंत में वो भी रोती हुई आई, ये हमने ये विष दिया था, हमारे ऊपर में भी कृपा की। सबको मंत्र दे करके ये दोनों ऋषि चले गए। इन्होंने अब ये मुक्त हो गए। शंकरसन जी ने इनको शिष्य बनाया, जिसको शिष्य जी शंकरसन के भी शिष्य शिव जी हैं। अब ये दोनों गुरु बन, अब ये मुक्त होकर के चारों तरफ में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते एक दिन विमान से कैलाश में शिव जी की सभा में पधारे और अपने गुरु भाई अपने सम वयस्क की शंकर जी से कुछ दिलगी करने लगते। अरे नंगे होकर के अपनी स्त्री को यहाँ पर रख करके बैठा और सभा में सबको उपदेश दे रहे हो, इसका नतीजा क्या होगा? लोग कहेंगे ये बड़ा भारी स्त्रीन है। और सभा वालों ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी भी चुप रहे, वो हंस मुस्कुरा दिया। किंतु पार्वती जी को बहुत क्रोध हो गया और उन्होंने अभी संपात कर दिया, जाओ तुम असुर हो जाओ, तुम शंकर जी जो जगत गुरु हैं ईश्वर हैं और उनको तुम इस प्रकार से अंकुश से उनको खाए चरा, उन पर भी मर्यादा इत्यादि का ये सब लगा रहा है, इस प्रकार से उनको अभी संपात कर दिया। वो हंस करके खिल खिला दिए, हंस करके कह गए अरे स्वर्ग में रहूं जहां भी रहूं, अब हमारे लिए कोई भी अशुभ चीज नहीं, जहां भी रहेंगे भगवान का स्मरण करो, इसलिए अवमस्तु आपका भी संपात हम लेते हैं, यदि इच्छा करते जो नहीं लूंगा तो नहीं लेते। इतने समर्थ थे, मुक्त महापुरुष थे, उनको काय व्य संपात करो, किंतु उन्होंने कृपा करके ग्रहण किया। कैसे? जैसे गरुड़ जी नित्य मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य वाहन हैं, इंद्र ने उन पर वज्र चलाया, अब वज्र का यह है जैसे कभी भी वार खाली नहीं जाएगा, निष्फल कभी नहीं होगा, जरूर जिसको लक्ष्य करके मारेंगे वो मरेगा। अब वो गरुड़ पर चलाया उन्होंने, तो गरुड़ जी ने देखा जैसे भाई ये ब्रह्मा की बात झूठ हो जाएगी और मैं मुक्त हूं, हमको तो ये स्पर्श नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने अपने पंख को झाड़ दिया तो उसमें एक पंख गिर गई, उसके सम्मान के लिए गरुड़ जी को ये वज्र फज्र कुछ नहीं कर सकता इंद्र का, वो तो मुक्त भगवान के नित्य पार्षद हैं, परिकर हैं, उनको क्या करेगा। किंतु उन्होंने एक रूम झाड़ दिया तो उसे एक पंख गिर गया, तो उसी से ही उसकी इज्जत रह गई, मर्यादा रह गई वज्र की, इंद्र भी संतुष्ट हो गए, बस एक पंख गिर गया। ऐसे ही इनको भी अभिसंपात नहीं लगता, किंतु उन्होंने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके ये अब वृत्रासुर यही हुए। वृत्रासुर से ही हो करके और इंद्र से युद्ध लगा, जब युद्ध होने लगा तो उन्होंने वज्र चलाया इन पर भी, तो वज्र को गिरा दिया, इनके हाथों से गिर गया। गिरने के बाद में कहते हैं वृत्रासुर जी अरे वज्र उठाओ और हमें मारो, मारो क्या ऐसा पड़ा हुआ है। किंतु वज्र को नहीं उठाया, बड़े लज्जित हुए। तब देखा जैसे ये वज्र नहीं उठा रहा है, तो उन्होंने विचार किया कि भाई इंद्र तो मुझे मार नहीं रहा, और इसी से मुझको मरना है, ये शरीर छोड़ना है, नहीं तो अभिसंपात पूरा नहीं होगा। और जब तक अभिसंपात नहीं होगा तब तक तामसी भाव से शरीर में भगवान का भजन नहीं होगा। क्यों? कोई वैष्णव से सत्संग नहीं होगा, कोई वैष्णव तो हमारे पास में आएंगे नहीं। मैं जो कुछ अपने में आप चिंतन करूँगा वही होगा, किंतु मैं बैठ बैठ करके किसी के पास में जा करके बैठूं और हरि कथा कर चर्चा करूं, ये तो संभव नहीं। जैसे रावण ने कहा था तामस शरीर के द्वारा भगवत भजन नहीं है, है ना। तामस
मन का भजन बंधु कर लिया, दूर नहीं भजन
तो तामस शरीर से भजन नहीं होता। और कोई भी आदमी उसको पास में नहीं आएंगे, इसलिए शरीर को छोड़ना, छोड़ करके भगवत भजन करना ही अच्छा है। इसलिए कजारे बराक इंद्र तुम्हारा ताकेम नहीं है, अरे तू बड़ा भारी मूर्ख है, इंद्र को कह रहे हैं। क्यों मूर्ख? अरे तू ऐसा मूर्ख हुआ जो पशु पक्षी गधे भेड़े से भी तू मूर्ख है। तेरे पास में भगवान है, तुम उनसे आराधना भी करता है, किनकी?
बामन
देव की आराधना करता है, तुम्हारे साथ में है और आराधना करके कहता है कि हमारा राज्य की रक्षा कर दो, हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आपत्ति ना आए, बस यही कहता है। अरे मूर्ख, विषयों का रहना यही तो विपत्ति है न, विपत्ति और क्या चीज है? विपत्ति कहते हैं किसको? विषयों का, भगवान के अतिरिक्त तो कोई भी विषय होना यही विपत्ति है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त तो कोई भी चीज हम रखते हैं तो क्या है? विपत्ति और विषय। भगवान गुरु वैष्णव की सेवा के लिए सब कुछ, उसमें अपने लिए, जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी थे, एक आदमी आया जैसे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आज कृष्ण का संसार किया, आज शादी करके एक कृष्णदासी मैंने संग्रहित की है। बाबा जी ने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया तू, तुम कृष्ण की इस दासी को कभी भोग दृष्टि से देखेगा तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, इसको तू कृष्ण की प्रिया समझ करके सब समय इसकी सेवा करना, कभी भोग बुद्धि मत करना, बस जल्दी से दौड़ करके मां से भागा। तो इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जिसे अपना सुख हो, सुख किसका हो? कृष्ण के लिए सुख। अजय तू इंद्र, तू राज्य की रक्षा मांग रहा है इनसे, बामन देव से, ये कभी नहीं प्रार्थना कीजिए आपके चरणों में मेरी अहित की भक्ति हो, इसलिए तुम सबसे बड़ा भारी हो। मैंने देखा जो सचमुच में ये तो कोई भाड़ा भारी महात्मा है जो असुर शरीर में है, इसको यदि हम कोई कष्ट दिया, इसकी निंदा की हमने, इसको यदि हमने मारा तो क्या होगा? महाअपराध हो जाएगा, 10 प्रकार का नाना अपराध में से पाप का दूर होना जल्दी हो सकता है, किंतु अपराध का दूर होना बड़ा भारी कठिन है, ये नहीं दूर होगा। इसलिए ये तो कोई महात्मा संत हैं, इसलिए इनको बाबू मैं नहीं मारूंगा, इसलिए उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया और वो बार बार उत्तेजित कर रहे हैं तू मारो मारो मारो, वो मारते नहीं, कहते ये बराक इंद्र में क्या मारेगा। तब वो हाथ जोड़ करके ध्यानस्थ होकर के भगवान की प्रार्थना करते, प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको मानो उसमें दर्शन दे करके काजे तो वर मांग ले, आज इंद्र जी भी नहीं जो कर सका, आज तुम हमसे ऐसी प्रार्थना कर रहे हो कि उसको बड़ा मूर्ख समझ रहा है क्योंकि विश्व में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर में अत्यंत तुम्हारे स्तौ स्तुति से प्रसन्न हुआ, तुम कुछ मांग लो। तो जब उन्होंने कहा तब ये क्या बोले, भाई हम लोग आ रहे हैं। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वाप कर्म करोतु काय। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूय, प्रभु मैं तो आपसे यही वर मांगता हूँ, यदि वर ही आपको देने की इच्छा है तो आप ही मुझको एक वर दे दीजिए, कोई जो आपको इच्छा दे दीजिए। तो प्रभु ने कहा एक बात करो, तुम धन संपत्ति ले लो, स्वर्ग ले लो, मुक्ति ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो हमारे मन की बात नहीं, तुम ही मांग लो जो कुछ तुमको चाहिए। बड़े चतुर थे ये चित्रकेतु महाराज, एक ही वर्ष से इन्होंने सब कुछ ले लिया। एक था अंधा व्यक्ति, उसकी शादी नहीं हुई थी और बड़ा निर्धन था, तो वो गया शंकर जी की आराधना की, तो शंकर जी ने कहा उसे प्रसन्न होकर के बर मांगो, एक बार मांगना बस, और उसको मांगना है बहुत। तो चलाक इतना चतुर था, उसने बर मांगा, उसको बर मांगना था तीन चार, एक तो मेरा अंधापन दूर हो जाए, मुझको दृष्टि शक्ति आ जाए, दूसरे बात हमारा खूब संपत्ति हो जाए, तीसरी थी हमको शादी हो जाए, और चौथी हमको संतान हो जाए, इतना मांगना था। तो उसने मांगा मुझको ये वर दीजिए, सोने की थाली में खाते हुए अपने बच्चों को मैं देखूं। क्या हुआ? सोने की थाली में अपने बच्चों को दूध और अन्न खाते हुए देखो, तो क्या हो गया? सोना का थाली किसको होगा? धनी राजा पर जा। अब बिना विवाह का बच्चा होगा तो विवाह के लिए भी मांग लिया, और
अंधापन भी दूर हो गया।
अंधापन क्या मैं उसको देखूं?
अंधापन
भी दूर, सब एक ही पर में मांग। तो वैसे ये भी एक ही बार में, एक ही तीर में सब कुछ मांग लिया। क्या मांग रहे हैं? अब इसी की व्याख्या दो श्लोक या तीन श्लोक ना इसके बाद, किंतु मूल श्लोक पहला है क्या? अहम हरे तो पापूल दासानुदासो भविताश्म भूय मन स्मरे अशुपतेर गुणान गृणीत बात
कर्म।
ये तीन चीजों एक साथ उन्होंने माना ना? हे हरे, हे समस्त पापों को हरण करने वाले, पापों को हरण करने वाले ना? और हमारे मन को हरण करने वाले जो आप हरे हैं, अहम हरे तो पादई को मूल दासानुदासो भविताश्म कि मैं कभी तुम्हारे पादई का मूल माने क्या? आपके जो चरण है उसके मूल, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? गुरु और वैष्णव, बिना वैष्णव की, बिना संतों की कृपा से भक्ति कभी नहीं हो सकती, असंभव। इसलिए भगवान के चरण कमलों का मूल पाने के लिए बिना गुरु के कभी भी भगवान के चरण कमल नहीं पाए जा सकते, इसलिए भगवान के चरण कमलों को पाने के लिए भक्त ही उसके मूल हैं। तो तुम्हारे जो मूल जो हैं पादई कमूल, इसलिए गुरु जी को क्या कहते हैं? ओम विष्णुपाद। विष्णुपाद माने क्या?
विष्णु लाभ करने के लिए पाद, विष्णुपाद
पदस्वरूप। भगवान के चरण कमल कौन है? इसलिए भगवान की यदि सेवा करनी है तो गुरु जी की सेवा करने से भगवान का चरण कमल सेवा हो, ऐसे समझो। बिना गुरु जी की सेवा के भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी न सेवा होगी। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान के चरण कमल जैसे हो गए हैं, उनके दासानुदासों, उनका दासों का दासों का अनुदासों का दास, मज्जन्मना
फलमिदं
फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव पदभृत्य भृत्य परिचारि चारक भृत्य भृतस्य भृत्य इति स्मरण। तुम्हारे दासों का दासों का दासों का दास, उनके पुनः दासों का अनुदास, अनुदास माने अनुदास माने
छोटा सा
एक तुच्छ दास भी हो गया अनुदास, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो वही यहाँ पर करें दासा पदई का मूल दासानुदास हो भवितास, भगवान के दास होने से नहीं चलेगा ना? यदि भगवान को पाना है तो उनके दासों को पकड़ो, यदि राम को पाना है तो, यदि कृष्ण को पकड़ना है तो किसको पकड़ो? इस नारद ऋषि जो इस जगत में घूमते हैं या ऐसे कोई महापुरुष हो? यदि और ऊपर में उठ गए तो सखाओं को पकड़ो, सिद्धाम सुबल इत्यादि को, नंद बाबा यशोदा जी को पकड़ो, और पकड़ो किसको? राधा जी को मत पकड़ो, किसको पकड़ो? उनकी जो दासियों की दासी की अनुदासी की जो कुंज की बहारने वाली जो झाड़ू देने वाली हैं, ऐसे मंजरियों को पकड़ो। उनको पकड़ने से नहीं होगा, उनके जो अनुगत अभी इस जन्म में जो साधन भजन करते हुए स्वरूप सिद्ध भक्त लोग हैं, गुरुपाद पद्म हैं, ऐसे गुरु जी के चरणों को ऐसे ही क्रम से ये पकड़ा जाता है। तो दासो न दासो भवितास्मी, भवितास्मी माने क्या? भूयः, पुनः पुनः मैं जन्म से नहीं डरता, मेरा जन्म हो किंतु भक्तों के दास के अनुराग में हमारा जन्म होता रहे। कब तक होता रहे? जब तक कि अंत में स्वरूप सिद्धि और अंत में वस्तु सिद्धि नहीं हो जाए, तब तक ऐसा ही जन्म होता रहे। जन्म मरण खराब नहीं है, ऐसे खराब भी है। बैरमुख जन्म हो तो खराब है, अब वैष्णव का जन्म मिलता जाए ना, जैसे सूतियां हैं, जौथकी हैं, अजौथकी हैं, जैसे कि नारद जी का संग मिल गया जमलार्जुन नंद कुमार मणिग्रीव को मिल गया, भले जैसे संग हुआ किंतु वही जन्म उनको कृष्ण लीला में प्रवेश कराया और अंत में उनको गायक बना दिया, गोलोक वैकुंठ सिंह कंठ और मधुकंठ उनको बना दिया। कैसी किसी तरह से संगत हो, वैष्णव में तो कोई सुख दुख तो वैसा कुछ है नहीं, अवज्ञा भी करके यदि कुछ भी करेगा तो अंततः तुमको जो अभी संपात कर देंगे तो भी उसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण लीला में जितने भी असुर आए हैं वो सब अभिसंपात के कारण ही तो अघासुर हुआ, बकासुर हुआ, किंतु थोड़ी सी उनकी कृपा हो गई। ये अगस्त ऋषि जी यदि कृपा नहीं करते,
इंद्रदुम्न
कभी भी हाथी नहीं होते और उनको ग्राह रूप दूसरा आदमी नहीं पकड़ता और फिर वो भगवान को प्राप्त होने का ये सोर्स है। इसीलिए दासो नु दासो भवितास्म भूय, पुनः पुनः मैं उनका दास हूं। मनस्मरेत अशुपतेन, अशु माने प्राणनाथ, प्राणनाथ कौन है? समस्त ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी भगवत अवतार के प्रति स्त्री का कभी भी भाव नहीं आ सकता, चाहे रामचंद्र हो चाहे और कोई भी अवतार। प्रेमी और प्रेमिका का भाव केवल आएगा किसमें? कृष्ण लीला के प्रति ही, उन्हीं रूप के प्रति आएगा। यदि रामचंद्र जी या बराह देव या बामन देव जी को ये प्रार्थना करते प्राणनाथ और मैं स्त्री की भांति आपकी सेवा कर सकूं, तो होता सिद्ध राम के प्रति भी या किसी भी अवतार बराह देव के प्रति? इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है चित्रकेतु महाराज जी को कुछ कृष्ण के प्रति ही लगाव हुआ। क्यों? संकर्षण से इनका संबंध था, और संकर्षण जी का किसे संबंध है? इसलिए श्रीमद् भागवत की लक्षण में यही बतलाया गया है, जिसमें वित्तासुर का उपाख्यान इसलिए दिया, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए मनस्मरेता, तीन चीज मांग रहे हैं हमारे यहाँ है, तीन चीज इस शरीर, तन मन वचन, काय मन वाणी। इन तीनों चीजों को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारा भजन पूर्ण हो जाएगा। ये तीन ही चीजें, वचन को पहले लगाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, स्तौ स्तुति करते हुए मन को इसको ऐसा बनाओ जो दूसरा कोई वाक्य की स्फूर्ति न हो, अपने आप भगवान में मन लग जाएगा। और जब तक तुम अपने वचन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए पहले अपने वाणी पर अंकुश रखो, भगवान के अतिरिक्त और कोई वाणी हम नहीं कहें। वाक्य मन और मन के द्वारा जो कुछ भी चिंतन करो बस भगवत चिंतन, और कोई चिंतन नहीं है। अपने भरण पोषण की क्या होगा चिंतन करके, जबकि वो पूरा हुई नहीं होगा अपने चेष्टा से, वो तो भगवान की कृपा से ही होगा। इसलिए उसके विषय में भी चिंतन मत करो, वो भी अपने आप आ जाए। न तत्प्रयास कर्तव्य जत आयु, वो तो आयु का नष्ट होना बेकार का। वो जब दुख अपने आप आ जाता है तो सुख भी अपने आप आ ही जाएगा, तो सुख के लिए हम चेष्टा क्यों करें? बस भगवान का हम भजन करेंगे इस जन्म में। इसलिए तन मन वचन के द्वारा ये तीनों मांग रहे हैं जो भगवान में लग जाए। तो कह रहे हैं मनस्मरेत अशुपतेरी गुणा, भगवान जो हमारे प्राणपति हैं, प्राण प्रियतम है, हमारा मन उनमें लगे, उन्हीं का स्मरण करते हैं दिन भर, ये आप हमको दीजिए। और गणित बार जिन लीलाओं का मैं स्मरण कर रहा हूं उन्हीं में हमारा वचन भी लग जाए, वचन उन्हीं का बात बोले। कैसे? कोई भी एक श्लोक ले लो भगवान की प्रार्थना, कोई भी कोई भी एक ले लो मन के द्वारा जिसका चिंतन करो, वचन के द्वारा उसी का स्तुति करो, वो अपना मन वहां पर लगा। जैसे श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहि समज्ज वद्यंश श्यामस्य वामभुज बद्ध तनुं कदा त्वामिन्दिरे
विरल रूप वरं भजा।
इस श्लोक को ऐसे पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भीतर में डुबकी लगाओ। हे श्यामे, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ श्याम, रमा रमण जो नारायण है, रमा के साथ में रमण करते हैं, उनको जो आनंदित करते हैं, उनको जो सुख देते हैं, उनसे भी रूप में अत्यंत अतुलित उनका रूप है, अत्यंत सुंदर सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत का। जगत माने यहाँ लक्ष्मी जी की जो नारायण की पत्नी हैं, जिनकी वो सेवा करती हैं, उनके भी चित्त को अपने सौंदर्य माधुर्य प्रेम से खींच लेते हैं, वो भी वृंदावन में आकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो और इसलिए समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम भुज, वाम भुज में राधिका जी को ऐसे पकड़ लिया। और राधिका जी की क्या दशा हुई? अंग अंग के जितने रूम है सब प्रफुल्लित हो गए, भावों की कितनी धारा और लहरियां सब खेलने लगी, मुख पर कितने तरह के भाव आए। अच्छे ऐसा मैं कभी देखूंगा? किसके लिए कर रहा हूं श्रीमती राम? यदि ऐसे ही चिंता करके यह मन कोई भी श्लोक को पाठ करें, मन में वो अंकित होगी बात, फिर मन और वचन दोनों एक हो जाए, तब तन क्या करेगा? उसी समय में धूल ने लूट लिया। कब हमारी ऐसी स्थिति? तब लूट रो करके, रो रो करके उनको रुका, तन मन और वचन तीनों एक हो गए। ऐसे ये कह रहे हैं, मन आपकी लीलाओं का स्मरण करे। कौन लीला की? इनके गुरु ने जो चीज दी है, किस? इनके गुरु शंकर, ब्रज के भावों को, उन्हीं की ब्रज के भावों को, लीलाओं का स्मरण मेरा मन। कौन कौन सी लीला? कितना कहेंगे? श्रीमद् भागवत सब भरा पड़ा है, उसमें भी शुद्ध रूप से भरे पड़े। हमारे गोस्वामी ने उन लीलाओं का वर्णन किया। तो इस तरह से मनस्मरे ताश अशुपते गुण, कैसे गुण? रूप तो उनको है बरहा पीरम नटवर बपु कर्ण यो कर्ण का, और उनका गुण क्या है? अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद अप्यसाधि लेभे गति धातुचितं ततो नम कंवा दयालु शरणं प्रपद्। ओ, मैं कृष्ण को छोड़ करके कौन ऐसा दयालु है जिनका मैं चरणों में शरण? उतना अपने स्तन में कालकूट विष मिला करके ले आई और माता का वेश बना लिया और मारने के उद्देश्य से आई, कालकूट विष, और उसके मुख में लगा करके पंप जैसा किया मारने के, और उन्होंने आंख अपने बंद कर दी और धातु उचित गति उसको दे दी, उसका वो कलंकित शरीर हटा दिया और उसका दिव्य और प्राकृत शरीर भी दे दिया और धात्री की गति उसे। ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके किसका भजन कर? ये सब गुण स्मरण। यदि जगह में हाथ दहाई के ऊपर में कृपा की तो हमारे ऊपर में कृपा नहीं करेंगे? चाहे तो इसलिए गणित बार उन्हीं का मैं स्मरण करूं और उन्हीं का मैं कीर्तन करता रहूं और कर्म करूं चुकाय उनके लिए श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दर्शाक्षात निवेदन इत्यादि, ये कर्म है उनके लिए। कर्म माने क्या? भक्ति के कर्म, और कर्मों से यहाँ तात्पर्य नहीं है। बस भक्ति मूलक जितने भी कार्य हैं अपने शरीर के द्वारा ही सब दो प्रकार से करेगा। एक वैदिक भक्ति के करेगा और उन्हीं का फिर एक रागानुगा मार्ग से करेगा, जैसा जिसका संग और जिसकी स्प्रिया है उसी रूप में करता हुआ साधन भजन करता है। फिर इसके बाद में बतलाया, न नाकपृष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वं निरहय कांक्षे। अब इसका फल कर आज यहीं तक रहे, एक कीर्तन करो।
माया बिना अधिकर मन
नारद मुनि बजाए बिना राधे कर मन
I'm माताए जगता जाने
माधुरी
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.